महाबंध पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 11। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताम्, नमो सिद्धाणं, नमो अयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसागुणं, भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं, महाधवलविख्यातं महाबंधम नमाम्यहम्।
आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें द्वितीय स्थिति बंध अधिकार को देख रहे हैं हम, और दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 42 पर आ गए, 42। नीचे का विशेषार्थ पढ़ना है तो हमारी बात यहाँ स्वामित्व का प्रकरण चल रहा था, और जघन्य में हमने ओग में स्वामित्व देख लिया, उसके बाद आदेश से नरक गति में भी हमने पढ़ लिया है, उसी का यहाँ विशेषार्थ पढ़ेंगे तो दोबारा हमने क्या पढ़ा वो भी याद आ जाएगी। देखो विशेषार्थ, क्योंकि नरक में, नरक कहने से ही जनरल, 7 कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन कहा था, वो असंगी से जो उत्पन्न होता है, वो विग्रह गति में उसका असंगी जैसा होता है, तो असंगी में भी जघन्य जैसा बंध कराना है। तो नरक में असंगी जीव भी मरकर उत्पन्न होता है, और उसके अपर्याप्त अवस्था में असंगी के योग्य स्थिति बंध होता है। यहाँ केवल अपर्याप्त कहा, परंतु हमें पता है कि केवल विग्रह गति में ही होगा वो, नहीं वहाँ, नहीं वहाँ तो वैकरिक मिश्र अवस्था में उसका जघन्य नहीं होगा, विग्रह गति में कारमाण का योग में ही असंगी जैसे बंध है, क्योंकि मिश्र अवस्था में तो उसका वैकरिक मिश्र ने जो नारकी अपर्याप्त जैसा बंध होगा वहाँ पर, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जैसा। हाँ आपकी पेन नहीं, हाँ क्या कहते हैं, देखो
अपर्याप्त अवस्था में लिखा है उसकी जगह
वो होना चाहिए विग्रह गति में,
विग्रह गति में ना,
कारमाण का योग में। पेज नंबर 42 नीचे का पैराग्राफ जो है विशेषार्थ वाला, यानी वो एक या दो समय तक ही उसका वो जगन्य रहेगा, क्योंकि ऊपर देखो ना सर्व विशुद्ध और प्रथम और द्वितीय समय में स्थित है, जो 57 नंबर का पैराग्राफ है ऊपर जिसका ये विशेषार्थ चल रहा है, उसके तीसरे लाइन में लिखा था ऊपर देखो, प्रथम द्वितीय स्थिति में समय में स्थित है, वैकरिक मिश्र वाला पहला दूसरा समय नहीं लेना है, ये एक मोड वाला होगा तो एक समय के लिए, दो मोड वाला तो दो समय के लिए। क्योंकि वहां असंगी जैसा बंध होगा तो असंगी में जघन्य कितना होता है, तो असंगी में जघन्य होता है कि जो 1000 सागर के अनुपात में जो ज्ञानावरण दर्शन जो जिसका होगा उसमें पल्ले का संख्यात व भाग कम, इतना उसका जघन्य बंध होगा 1000 सागर। अभी ज्ञानावरण का है तो 1000 सागर का 3 सप्तमांश करके उसमें पल्ले का संख्यात व भाग कम। देखो नीचे लिखा है ना विशेषार्थ में, नरक में असंगी जीव भी मरकर उत्पन्न होता है, और उसके अपर्याप्त अवस्था में, वो हमें अपर्याप्त में क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो पहले लाइन में लास्ट शब्द है अपर्याप्त अवस्था में, नीचे का पैराग्राफ विशेषार्थ की पहली लाइन, वही वही 42 पेज पर रहे लास्ट, हाँ उत्पन्न होता है उसके अपर्याप्त लिखा है, अपर्याप्त लिखा है ना, वहाँ जो लिखा है अपर्याप्त, वहाँ अपर्याप्त से क्या समझना, विग्रह गति में यानी कारमान का योग में।
हमने जो पहली बार पढ़ा था
हाँ,
उसमें 57 नंबर के जो तीसरी लाइन में प्रथम द्वितीय संयम
समय में स्थित है, वहाँ ही लिखा
था, वहाँ आपने लिखवाया था विग्रह गति के।
हाँ, विग्रह गति के पहले।
अब यहाँ अपर्याप्त और अवस्था की जगह विग्रह गति में।
विग्रह गति में बराबर। वो बंद कितना होगा? ज्ञानावरण का 1000 सागर का 3 सप्तमोश, उसमें पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, संख्यात्वा एक ज्ञानावरण आदि का, जैसे मोहिनी का होगा 1000 सागर में पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, सब में अपना अपना समझ लेना। असंगी के योग्य स्थिति बंद, इसी से सामान्य से नरक में, सामान्य से यानी पहला है दूसरा है तीसरा, इसी कोई हम बात नहीं करेंगे, सामान्य से नरक में यही कथन करेंगे। और जब विशेष से बात करेंगे तो ये बात केवल पहले नरक में घटित होगी, क्योंकि असंगी जीव मरकर पहले ही नरक में जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता। तो कहते इसी से सामान्य से नरक में असंगी पंचेंद्रिय चर जीव को, चर क्यों शब्द डाला पता नहीं है, 7 कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कहा है। प्रथम नरक देव भवनवासी, ऊपर चर शब्द आया था क्या? अन्नदर असन्नी पंचेंदी इतना ही आया था। चर शब्द इन्होंने अपने से डाला है क्या पता नहीं। हाँ, ऊपर भी यही आदेश से सेकंड लाइन में हुआ था ना, पंचेंद्रिय चर असंगी पंचेंद्रिय इतना ही चाहिए था। हाँ देखो देखो, इसी से सामान्य से नरक में असंगी पंचेंद्रिय जीव को 7 कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कहा है। अच्छा अच्छा, असंगी पंचेंद्रिय चर का अर्थ होता है वहां से आया हुआ, असंगी पंचेंद्रिय नहीं है वो। जो असंगी पंचेंद्रिय चर जीव है यानी वहां से आया हुआ जीव है। यानी असंगी पंचेंद्रिय मरकर वो नारकी कहलाएगा ना, अभी उसको असंगी पंचेंद्रिय नहीं कहेंगे। प्रथम नरक, अभी ये बात कहां कहां घटित होगी। प्रथम नरक देव यानी सामान्य से देव, विशेष कहना है तो भवनवासी और व्यंतर देव, इन मार्गणाओं में भी असंगी जीव मरकर उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ सामान्य नरक के समान प्ररूपणा की है। द्वितीय आदि नरकों में मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि के 7 कर्मों का स्थितिबंध न्यून होता है। क्या कहते हैं, द्वितीय आदि नरकों में मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि के, यानी मिथ्या दृष्टि का कब होगा जघन्य? तो कहते कि अपर्याप्त अवस्था में, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, अंत कोड़ा कोड़े। और सम्यक दृष्टि का, वहां तो अपर्याप्त अवस्था में कोई सम्यक दृष्टि है ही नहीं, पर्याप्त अवस्था में सम्यक तो प्राप्त करेंगे, पर वो मिथ्या दृष्टि के अपर्याप्त अवस्था में जो अंत कोड़ा कोड़ी है उससे भी समय दृष्टि के 7 कर्मों का स्थितिबंध न्यून होता है, ये उसका अर्थ है। शेष रहे देवों में भी ऐसा ही जानना चाहिए, यानी जो यहाँ भवनवासी व्यंतर को छोड़कर बाकी देवों में भी समय दृष्टि के वो जघन्य स्थितिबंध कहलाएगा, सर्व विशुद्ध समय दृष्टि लेना वहां। इसलिए इन मार्गणाओं में सर्व विशुद्ध परिणाम वाले सम्यक दृष्टि को 7 कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कहा है। अनुदिश से आगे लेकर आगे सब देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं, इसलिए वहां तो सम्यक दृष्टि तत्प्रायः संक्लेश परिणामों के होने पर आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी होता है। आयु के लिए बताए, पर यहां जो अन्य मार्गणाएं गिनाई है उनमें आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध की योग्यता मिथ्या दृष्टि के ही पाई जाती है। क्योंकि यहां मिथ्या दृष्टि के आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध के योग्य संकलेश परिणाम हो सकते हैं, उतने अन्य गुणस्थान वाले के नहीं। हमने जो पहले पैराग्राफ 57 देखा था उसी का ये विशेषार्थ के रूप में यह बात बताई। वो बांधने वाले अनुदिश, वो कौन सी आयु बांधेंगे? मनुष्यों की बांधेंगे, यह देखते हो फिर से।
अच्छा, वो देव मनुष्य की आयु,
हाँ देव बांधेंगे। अनुदिश से आगे लेकर सब सम्य दृष्टि होते हैं, तो वो मनुष्य आयु है, तो वो जघन्य कब बांधेगी? तो संकलेश में। ज्यादा कब बांधेगी? विशुद्धि में। वो पूर्व कोटि के बांध सकते है, वो तो हमने उत्कृष्ट में देखा। और जघन्य में क्या देखना है? अंतर्मूर्त आबादा, और वहां मिनिमम कितना बंद करेंगे वहां के? तो वर्ष पृथक पका करेंगे, क्योंकि वो सारे समय दृष्टि है। समय दृष्टि देव जघन्य में जघन्य मनुष्यायु कितनी बांधेंगे? क्योंकि समय दृष्टि देव मनुष्यायु की बंद करेंगे, तो कहते उनका बंद कितना होगा? तो कहते कि वर्ष पृथक पका होगा, मिनिमम उतना तो होगा ही। हमने देवों में देखा था कि कौन से देव अंतर्मूर्त प्रमाण आयु बांध सकते हैं। सौधर्म ईशान तक के देव अंतर्मूर्त की मनुष्य 3 इंच आयु बांध सकते हैं। पर्याप्त के ही बांधते हैं, अपर्याप्त के बांधने का सवाल नहीं है। सनत कुमार से लेकर हमने सनत कुमार और महेंद्र, तो वो मुहूर्त पृथक्त्व की आयु बांधते हैं। देखो पेज नंबर 24 पर हमने देखा था, ये शायद 24 ही था, देख लेते हैं। कौन से देव कौन सी आयु बांधते हैं हमने देखा था, 23 पेज पर है। नहीं तो देवों की बात यहाँ पेज नंबर 25 पर थी। 1, 2, 3, 4, 5 नीचे से 5वीं लाइन, ज्योतिषी देव तथा सौधर्म और ईशान कल्प में आयु कर्म का जघन्य स्थितिबंध अंतर्मूर्त प्रमाण होता है। सानत कुमार और महेंद्र में मुहूर्त पृथक्त्व प्रमाण होता है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो का पृष्ठ में, यानी सानत कुमार महेंद्र दो ही लिए, मुहूर्त पृथक्त्व लिया। आगे के जो 4 लिए ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो का पृष्ठ में, दिवस पृथक्त्व है। शुक्र महाशुक्र शतार सहसरार में पक्ष पृथक्त्व, और आनत प्राण तारण अच्युत में मास पृथक्त्व है, और सर्वार सिद्धि तक वर्ष पृथक्त्व। क्यों? क्योंकि ये मिथ्या, देखो देखो आनत प्राण तारण अच्युत तक तो मास पृथक्त्व, यानी वो तो मिथ्या दृष्टि को ही लेना है, मास पृथक्त्व प्रमाण, और सर्वार सिद्धि तक वर्ष पृथक्त्व प्रमाण। क्योंकि यहाँ भले वो तो आनंद प्राणत भी शुक्ल लेशा वाले हैं, मिथ्या दृष्टि है, मास पृथक्त्व का बंद करेंगे। आगे तो सारे समय दृष्टि ही है, और समय दृष्टि है तो कितना भी कम बांधेंगे तो वर्ष पृथक्त्व प्रमाण बांधेंगे। अपनी बात यहाँ 43 पेज पर आ गए हम। अब 3 इंचों की मार्गणा हम देखने जा रहे हैं, और अपना प्रकरण जघन्य स्थितिबंध का चल रहा है। जब 3 इंच कहेंगे तो जघन्य किसके होगा? एकेंद्रियों के होगा, और एकेंद्रियों में जघन्य किसके होगा? बादर पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त को नहीं, उत्कृष्ट भी और जघन्य भी बादर पर्याप्तों को होता है। हाँ तो यहाँ बापज, तो 7 कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अन्यतर जो बादर एक इंद्रिय जीव पर्याप्त है, सर्व विशुद्ध है और जघन्य स्थिति बंद कर रहा है, ये भी कंडीशन है, क्योंकि उसी परिणाम में एक समय दो समय अधिक पल्ले के असंख्यात भाग तक के अधिक बंद भी हो सकता है, इसलिए जघन्य स्थिति बंद कर रहा है ये भी कंडीशन डाली। वह सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंद का स्वामी है। ये कितना जघन्य स्थिति बंद करेंगे मोहनीय का? हाँ लक्ष्मी, मोहनीय का बंद कितना? सागर में पल्ले का असंख्यात भाग कम, फिर ज्ञानावरण के लिए उसका तीन सप्तमांश, नाम गोत्र के लिए दो सप्तमांश वगैरह, यानी मोहनी का लिख के रखेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी ओघ के समान है, यानी वो लब्धि पर्याप्त की क्षुद्र भव की आयु बांधने वाले का और असंक्षेपाध्या में वायु बांध रहे हैं, यानी जघन्य आबादा होगी। इसी प्रकार सब एकेंद्रिय, क्योंकि जघन्य स्थिति बंद के में सब एकेंद्रिय में सब बादर एकेंद्रिय पर्याप्त लेना, सब एकेंद्रिय में पर्याप्त यानी बादर का पर्याप्त भेद, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म पर्याप्तों को उनकी अपेक्षा से जघन्य होगा, इस तरह से सब पांचों स्थावर काय, पांचों स्थावर काय में भी जैसे पृथ्वी का एक लेंगे तो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त को जघन्य होगा, इस तरह से सोचना है। औदारिक मिश्र का योगी क्योंकि औदारिक मिश्र का योग तो एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रियन तक के सबको होगा, पर्याप्त पर्याप्त सबके होगा, तो वहां पर भी औदारिक मिश्र का योग में बादर एक इंद्रिय पर्याप्तों को ही लेना जघन्य करने वाले का। कार्मण का योगी मत्य ज्ञानी, कार्मण का योगियों में भी सभी है एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, उसमें भी ये मादर एक इंद्रिय पर्याप्त को कार्मण का योग में लेना। मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी असंयत कृष्ण लेशा वाले नील लेशा वाले कापोत लेशा वाले, यानी इनमें जघन्य कौन करेंगे तो एक इंद्रिय बादर पर्याप्त युसुस लेशा वाले। अभव्य सिद्धिक मिथ्या दृष्टि असंगी और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ तीर्यंचों में सात कर्मों का सबसे कम स्थितिबंध बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीवों के होता है, इसी से यहाँ तीर्यंच गति में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध के स्वामी का कथन उनकी मुख्यता से किया है। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें प्रायः यह स्थितिबंध संभव होने से उनका कथन ओघ तीर्यंचों के समान करने का निर्देश किया है। इन सब मार्गणाओं में आयु कर्म का क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण जघन्य स्थितिबंध संभव है, इसलिए आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी का कथन ओघ के समान किया है। ये समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अब तीर्यंचों में पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक कहा, तो पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक में कौन कौन होते हैं? हाँ, यानी पंचेंद्रिय तीर्यंच उसमें संगी असंगी पर्याप्त पर्याप्त सब आ गए, तो पंचेंद्रिय तीर्यंच कहने से इन जनरल लिया, फिर पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त कहेंगे और योनिमति तीर्यंच, पर पंचेंद्रिय कहो या योनिमति कहो कुछ भी तो संगी असंगी दोनों आते हैं, तो पंचेंद्रिय तीर्यंच कहेंगे तो सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? तो कहते अन्य तो जो असंगी जीव, असंगी में क्योंकि पंचेंद्रिय कहने से संगी असंगी दोनों आ गए, तो असंगी में अभी जघन्य स्थिति बंद करना है तो विशुद्धि में होगा, तो असंगी जीव सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है और जघन्य स्थिति का बंद कर रहा है। अभी इसमें मोहनीय का कितना होगा? हजार सागर में पल्ले का संख्यात भाग कम और बाकी ज्ञानावरण का उस प्रपोर्शन में होगा। देखो पंचेंद्रिय तीर्यंच पांचवें गुणस्थान में भी चला जाए तो भी अंत कोड़ा कोड़ी का बंद करेगा, इसलिए असंगी पंचेंद्रिय लिया, और वो भी अपर्याप्त नहीं लेते हुए पर्याप्त लिया, क्योंकि संकलेश कहो या विशुद्धि कहो पर्याप्तों के ज्यादा हो, इसलिए विशुद्धि वाला जीव लिया, जघन्य बंद करने वाला ले लिया। आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है? अब आयु कर्म का जघन्य बंध कितना कर सकता है उसके पहले नक्की करो। हाँ लक्ष्मी जी, अरे वही क्षुद्र वो बांध सकता है ना। अरे ये बांधने वाले जीव पर्याप्त, क्या मनुष्य भी नहीं बांध सकता क्षुद्र वो? हाँ तो ये पंचेंद्रिय 3 इंच क्यों नहीं बांधेंगे? ये उनकी अपनी आयु नहीं गिननी है, वो बंद किसका कर रहे हैं? मनुष्य 3 इंचों का कोई भी भेद हो वो जघन्य आयु बांध सकता है इसकी, किसकी? क्षुद्र भव वाली। देव और नारकी नहीं बांधते हैं, इसलिए देव नारकी में अलग सोचना है। मनुष्य 3 इंचों का कोई भी भेद हो तो ये लब्धि अपर्याप्त की आयु बांध सकते हैं जघन्य वाली। जब उत्कृष्ट आयु थी तो उसके बारे में हमको सोचना पड़ता था, यहाँ जघन्य के बारे में मनुष्य 3 इंचों को ले लेना। देखो क्या कहते हैं, आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है? तो कहते अन्यतर संगी या असंगी जीव, क्योंकि पंचेंद्रिय 3 इंच ले न, उसमें संगी या असंगी, जो कि पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, साकार जागृत हो, तत्प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाला हो, क्योंकि मनुष्यायु और 3 इंच आयु है वो, भले क्षुद्र हो की भी क्यों ना हो, तो आयु कहने से वो प्रशस्त है, तो संकलेश में वो जघन्य बंधेगी, इसलिए तत्प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाला हो और जघन्य स्थितिबंध कर रहा हो, ये क्षुद्र भव की बात है, उसका आयु बांध रहा है। और कब बांध रहा है? वो असंक्षेपाध्या काल में बांध रहा है, वह आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय 3 इंच अपर्याप्त और पंचेंद्रिय अपर्याप्त के जानना चाहिए। ये पंचेंद्रिय अपर्याप्त ये इंद्रिय मार्गणा का भेद है, और पंच देखो देखो जघन्य स्थितिबंध के लिए जघन्य आबाधा आवश्यक है। जब हम उत्कृष्ट आयु का उत्कृष्ट स्थितिबंध देखा था 33 सागर वाला, तो वंथर पूर्व कोटि वाली आबाधा ली थी, वो कंडीशन है उसके अंदर, उसी को हम उत्कृष्ट स्थितिबंध में गिनेंगे, क्योंकि बंध के समय से उसका अंतिम निश्चय कब फिरने वाला है उसको सब पूरा ले लेना है। यानी जब हम वंथर पूर्व कोटि कहते ना, तो उसके पहले समय में जब आयु बंध शुरू किया था उस समय लेते हैं उसको, क्योंकि आयु पूरी अंतर्मुण तक बंधेगी। अब यहाँ जघन्य स्थिति बंध की बात करेंगे, उसका स्वामी तो बता दिया, तो आयु बंध के अंतिम समय में गिनेंगे हम उसको। तो कहते इसी प्रकार पंचेंद्रिय 3 इंच अपर्याप्त, जो 3 इंच गति मार्गणा का भेद है, और पंचेंद्रिय अपर्याप्त कहने से इंद्रिय मार्गणा का भेद है। क्योंकि जैसे ऊपर भी बाकी सब 3 इंचों में एकेंद्रिय वगैरह बता दिया, तो उसी में कायिकों की भी बात की वगैरह वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 44। अब इंद्रिय मार्गणा में ही द्विंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों में 7 कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? पहले हमने जब देखा था कोई भी पर्याय हो, द्विंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, उसका उत्कृष्ट भी पर्याप्त करेंगे, जघन्य भी पर्याप्त करेंगे। तो जो अन्यतर ये अपर्याप्त लिखा है वो पर्याप्त कर देना। ऊपर सेकंड लाइन में पज्जतस्य है ना, तो यहाँ ओ गलती से पड़ा है, दूसरी लाइन में अपर्याप्त का अ निकालो, पर्याप्त रखो। हिंदी में दूसरी लाइन, जो अन्यतर पर्याप्त चाहिए, अ को निकालना है। अन्यतर पर्याप्त जीव साकार जागृत है, क्योंकि हम देखते हैं विशुद्धि जो है या संकलेश है साकार जागृत अवस्था में होगा, सर्व विशुद्ध है और जघन्य स्थितिबंध कर रहा है। ये जघन्य स्थितिबंध कर रहा है, ये कंडीशन हर जगह डाली, क्योंकि क्या है किसी विशिष्ट परिणाम से अनेक अलग अलग स्थितिबंध हो सकते हैं। कितने अलग हो सकते हैं? पल्ले के असंख्यात विभाग इतने। और एक ही स्थितिबंध कितने परिणामों से होते हैं? असंख्यात लोग के मार्ग, इसीलिए कंडीशन डाल रहे सारे। सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अब ये भी लब्धि अपर्याप्त की आयु बांधेगी शूद्र भव की। जो अन्यतर जीव पर्याप्त है या अपर्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त हो या अपर्याप्त, क्योंकि तत्प्रायोगिक संक्लेश लेना था। अति संक्लेश लेना होता तो हम पर्याप्त उनको कहते हैं, पर आयु तो तत्प्रायोगिक में बनती है, इसलिए तत्प्रायोगिक संक्लेश परिणाम वाला है और जघन्य आबादा के साथ जघन्य स्थितिबंध कर रहा है। वह आयु के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। इसी प्रकार इन तीनों में पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए तथा त्रस अपर्याप्तकों में द्विन्द्रिय अपर्याप्तकों के समान भंग है। ये त्रस अपर्याप्त ये काय मार्गणा का भेद है त्रस कायिक में। अब आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी त्रस पर्याप्तों में क्या होगा? जघन्य बंध कौन करेगा? नवे दसवें गुण स्थान आएगा ना। हाँ, दसवें गुण स्थान वाला शपक, क्योंकि अपर्याप्त को यहाँ लिया ना। त्रस अपर्याप्तों का इसी के समान है, ठीक है वो तो, परंतु त्रस पर्याप्त कहने से दसवां गुण स्थान आ गया। दसवें में नौवे में जहाँ यथा योग्य हमने देखा तो वहां होता है। और त्रस पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, जघन्य आयुबंध क्षुद्र भव का तो करेगा ही करेगा। केवल देव और नार के नहीं करेंगे, बाकी जिस जिस मार्गणा में मनुष्य तीर्यंच है वहां आयु का जघन्य स्थितिबंध क्षुद्र भव संबंधी लेना है। अब वैक्रिय काय योग में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अन्यतर देव और नारकी जीव जो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि वैकृत काय योग में अभी वो पर्याप्त जीव हो गया है, देव नारकी पर्याप्त है, तो उनमें जो विशुद्धि किसके होगी? सम्यक दृष्टि है, साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है और जघन्य स्थितिबंध कर रहा है। सर्व विशुद्ध में हो सकता है, अभी उनकी विशुद्धि ज्यादा तो अनंतानुबंधी के विषय विजन में होगी, परंतु उन्होंने सामान्य से सर्व विशुद्ध कह दिया। हाँ, नहीं नहीं, वो तो सर्व विशुद्ध लिया, सर्व विशुद्ध है, विशुद्ध ऑर्डिनरी विशुद्धि भी नहीं लिया, सर्व विशुद्ध हम मैक्सिमम विशुद्धि वाले जीव लिया। आयु कर्म के अब वैक्रिय काय योग में आयु कर्म का जघन्य कौन करेंगे? हमने देखो अंतर्मूर्त का बंध हो सकता है, नारकी भी करते देव भी करते नीचे वाले देव। जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अन्यतर देव और नारकी जीव जो कि तत्प्रायोगिक संक्लेश परिणाम वाला है और मिथ्या दृष्टि है, वह आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। यानी वो कितना कर रहे हैं आयु का जघन्य स्थितिबंध? अंतर्मूर्त वाला। हमने देखा ना सातों ही नरक के नार की अंतर्मूर्त वाला स्थितिबंध कर सकते आयु का, और देव तो सौधर्म ईशान तक के देव कर सकते हैं। इसी प्रकार वैक्रिक मिश्र का योग में जानना चाहिए, वहां तो आयु का बंध नहीं होगा, परंतु उनमें भी जघन्य किसको लेना, इतनी विशेषता है कि इसमें जो तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी होता है। हमने यहाँ कुछ लिख के रखा है 303 के लिए, ये रेफरेंस। वहाँ क्या बात आई थी? तीन सौ तीन में जो पर्याप्त होने पर सम्यक तो प्राप्त होगा ऐसा वहां लिखा था। देखो वहां लिखा है विशेषार्थ में, मात्र वैक्रियक मिश्र का योग में सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए जिन प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामित्व वैक्रियक का योग में सम्यक्त्व के अभिमुख हुए जीव के कहा है। अच्छा वो पर्टिकुलर प्रकृतियों की बात है, यहाँ उनके जघन्य स्थितिबंध का स्वामित्व जो पर्याप्त होने पर सम्यक्त्व को प्राप्त होगा ऐसे जीव के जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए। अब जब वहां बात आएगी तब हम देखेंगे उसको। या तीर्थंकर की प्रकृति की सत्ता वाला जो पर्याप्त होने पर सम्यक तो प्राप्त करेगा ये भी हो सकता है। यानी वहां एक शब्द डालना रह गया था, तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा, उसी का अर्थ होता है पर्याप्त होने पर पूर्ण करेगा और समय दृष्टि होगा। यानी उसमें इसमें कोई जिसको कहते इसमें कोई विरोध नहीं है, उसमें हमने एडिशन की है। हाँ एडिशन की थी, बात वही है यहाँ जो लिखे वहाँ पर लिखी है, परंतु वहाँ किसी पर्टिकुलर प्रकृतियों की बात थी इसलिए वो बात अलग थी। अब देखो यहाँ हम अब वापस अपने पेज पर आते हैं। वैक्रिक मिश्र की बात पढ़ रहे थे पेज नंबर 44 पर। हाँ 303 के लिए ये रेफरेंस दिया।
हाँ 303 के लिए ये तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा
वैकरिक मिश्र में,
यानी यहाँ का यहाँ से वहाँ का रेफरेंस नहीं है, वहाँ से
नहीं, वहाँ किसके लिए रेफरेंस दिया था वो देखने के लिए मैं वहाँ गई थी। यानी ये हमारा विषय तो चालू ही है, यहाँ 303 का कोई संबंध नहीं है। 303 के लिए यहाँ का संबंध हमने प्रस्तुत।
हाँ
देखो अभी हम पढ़ते हैं तो वैकरिक मिश्र में क्या कहेंगे, तो जो तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी होता है। आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? तो कहते अन्यतर प्रमत्त संयत जीव जो साकार जागृत है और सर्व विशुद्ध है वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। आहारक मिश्र का योग में जो तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। सर्वत्र जो मिश्र है, जो औदारिक मिश्र कहो आहारक मिश्र कहो वैकरिक मिश्र में यही बात ली है। आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? हमने किसमें चल रहे आहारक और आहारक मिश्र की बात चल रही, तो कहते अन्यतर तत्प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाला जीव, क्योंकि देवायु बन रही है तो संकलेश में जघन्य बंधेगी। आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है, ये कितना होता है याद है कि पृथक पल्य पल्य पृथक। हाँ क्योंकि हमने देखा संयमियों के तो पल्य पृथक्त्व का मिनिमम आयु बंध होगा ही। ऐसे सामान्य जो जीव है मिथ्या दृष्टि या अन्य जो है तो सौधर्म ईशान की जघन्य तो साधिक पल्य प्रमाण आयु बांध सकता है, पर इनको पल्य पृथक्त्व लेना है। अब वेद मार्गणा की बात देखेंगे। आगे बढ़ना है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद में, अब इनका उदय कहाँ तक है? हाँ, नवे के पहले भाग तक, यानी उनकी विशुद्धि मैक्सिमम कहाँ होगी? तो क्षपक में होगी। सात कर्मों के, अभी नपुसक वेद में तो हम एक इंद्रिय से भी कम हो जाएगा ना वहां पर, हाँ वहीं पर लेना है। सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर अनिवृत्ति क्षपक जीव जघन्य स्थितिबंध कर रहा है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। क्योंकि हमने देखा था उसको कितना होता है, स्त्रीवेद और नपुसक वेद में हमने देखा था, अन्य अन्य कर्मों का अन्य अन्य होता है ना। मोहिनी का संख्यात 100 वर्ष देखा था, और तीन घाती का संख्यात 1000 वर्ष देखा था, और नाम गोत्र का और वेदनीय का पल्ले का असंख्यात भाग देखा था। पहले याद है आपको? पुरुष वेद में ऐसे ही लेना है, वो तो संख्यात वर्ष लेना है, मोहिनी का तीन घाती का संख्यात 100 वर्ष और बाकी का संख्यात 1000 वर्ष, इस तरह से लेना है। यानी संख्यात वर्ष कह सकते हम तीनों के लिए, यानी वो वेद का अंतिम समय लेना है, वेद के उदय के अंतिम समय में लेना, अपने अपने वेद के उदय के अंतिम समय में। यानी संख्यात 100 कहो, संख्यात 1000 कहो, यानी संख्यात वर्षों का बंध होता है वहां पर। आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी ओघ के समान है, क्योंकि स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी तो तिर्यंच मनुष्य भी है, तो लब्धि अपर्याप्त की आयु बांध सकते हैं। ओघ के समान यानी वो तो क्षुद्र भाव के आयु बांधेंगे। वो संक्षेपधा काल में बांधेंगे। तो उनका जघन्य कहलाएगा। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुष वेद में जो संगी हो, असंगी हो, पर्याप्त हो, वह आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। यानी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में वो नहीं बंधेगी, बस इतना बताना है। क्योंकि स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीव जब अपर्याप्त कहेंगे तो वो कौन सा अपर्याप्त वाला होगा? निवृत्ति अपर्याप्त वाला होगा। और नपुसक वेद में जब अपर्याप्त कहेंगे तो लब्धि अपर्याप्त भी होगा, जो आयु बांध सकते हैं। फिर से, स्त्री वेदी और पुरुष वेदी है वो तो नियम से कौन से जीव है? पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है, पर्याप्त नाम कर्म वाले हैं। परंतु जब हम नपुसक वेदी कहते हैं, वो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कोई भी हो सकते हैं, एक बात। और लब्धि अपर्याप्त भी नपुसक वेदी होते हैं। तो लब्धि अपर्याप्त जीव जो है वो अपर्याप्त ही होते हैं, उसी अवस्था में आयु का बंध भी कर सकते। और जब हम स्त्री वेद और पुरुष वेद में अपर्याप्त जीव कहेंगे, वो निवृत्ति अपर्याप्त हो गए, वो आयु का बंध नहीं कर सकते। इसलिए कंडीशन डाली, इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद और पुरुष वेद में कौन हो सकते हैं? संगी पंचेंद्रिय भी, असंगी पंचेंद्रिय भी, और पर्याप्त हो, वह आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। और नपुसक वेद में संगी हो, असंगी हो, पर्याप्त हो, अपर्याप्त हो, वह आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। क्योंकि नपुसक वेदी कहने से एक इंद्रिय से सब आ गए, इन्हें लब्धि अपर्याप्त अवस्था वाला आयु बांध सकता है। हाँ, इसलिए यहाँ अपर्याप्त को भी लिया, उसी को लेना। नपुसक वेदी भी अपर्याप्त कहने से निवृत्ति अपर्याप्त को नहीं लेंगे। इसी प्रकार ये तो वेद मार्गणा में जो बात बताई, ऐसा ही क्रोध मान और माया कषाय में भी जानना चाहिए, यानी कषाय मार्गणा की अपेक्षा, क्योंकि उसमें भी बात घटित होती है। उनमें जघन्य कहाँ लेना है? क्रोध मान माया, यहाँ तो सवेदी के अंतिम भाग लेना, वहाँ अपने अपने कषाय के अंतिम समय में लेना। लोभ कषाय को क्यों छोड़ा? उसमें दसवां गुण स्थान भी है, इसलिए ओक के समान घटित होता है। वो पहले बता चुके थे। अब विभंग ज्ञान में, ज्ञान मार्गना की अपेक्षा विभंग ज्ञान की बात चलेगी। तो विभंग ज्ञान में सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है? देखो, विभंग ज्ञान कहने से पहले दो गुण स्थान है और हमें उत्कृष्ट बंध नहीं जघन्य बंध की बात करनी है। तो विभंग ज्ञान होते हुए सर्व विशुद्धि कब होगी? क्योंकि विभंग ज्ञान तो संगी पंचेंद्रिय के ही होगा, इसलिए हमको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी में हम एकेंद्रिय को ले सकते थे। अब यहाँ किसको लेना है? पहले दूसरे गुणस्थान वालों को। तो उसमें सर्व विशुद्धि कब होगा? पहले गुणस्थान के सातवें के अभिमुख वाला लेना, उसको लेना, सातवें में जाने वाला जी, पहले से सातवें में। देखो, विभंग ज्ञान में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है जो अन्यतर मनुष्य संयम के अभिमुख है, साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है और जघन्य स्थितिबंध कर रहा है? वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है, क्योंकि हमने देखा है तो पहले से चौथे में जाते हैं, उसके स्थितिबंध बड़े हो गए क्योंकि उसका अपसरण कम हुआ है, और यहाँ जो है वो अपसरण बड़े बड़े हुए हैं तो स्थितिबंध और ज्यादा घट गया है। तो डायरेक्ट पहले से सातवें में जाने वाले के अंत कोड़ा कोड़ी ही होगा, परंतु अन्य जीवों की अपेक्षा वो कम होगा। अब विभंग ज्ञान में आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अब विभंग ज्ञान तिरंच और मनुष्यों में भी होता है और वह लब्धि अपर्याप्त की भी आयु बांध सकता है, इसलिए कहते जो अन्यतर तिरंच या मनुष्य साकार है, जागृत है, संकलेश परिणाम वाला है और जघन्य आबादा के साथ जघन्य स्थितिबंध कर रहा है, वह आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। क्षुद्र भो यानी हम देखते ना, यहाँ तो विभंग ज्ञानी है और हम देखते अन्य मतियों में कोई विभंग ज्ञानी होगा तो कैसी कैसी वो तो बुआबाजी चलती है उनकी और जाके अपर्याप्त में उत्पन्न होगा। अब संयम मार्गना की बात बताएंगे। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अब ये तो नवे गुण स्थान तक है। जो अन्यतर अनिवृत्ति क्षपक, नवे के अंत में लेना वो भी क्षपक, क्षपक शनि वाला अंतिम जघन्य स्थितिबंध कर रहा है, अंतिम जघन्य स्थिति बंध है, उसमें वो जघन्य यानी सर्व विशुद्ध वाला है ऐसी कोई नहीं, क्योंकि नवा गुणस्थान है तो सबकी विशुद्धि समान होती है, एक एक समय के सुनिश्चित परिणाम होते हैं, इसलिए वो अंतिम स्थिति बंध अंतर्मूर तक चलेगा। उन सब जीवों को यहाँ लिया, ये ख्याल में आती बात, क्योंकि नवे गुणस्थान से हमने देखा ना सबके प्रमाण परिणाम है वो समान होते हैं। नीचे के गुणस्थानों में हम सर्व विशुद्धि वाला शब्द लगाते हैं, यहाँ तो सबकी विशुद्धि समान है तो कोई भी जीव ले सकते वहां का, और अंतिम स्थितिबंध करा है जघन्य स्थितिबंध, वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। अब संयमियों में आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो प्रमत्त संयत जीव तत्प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाला है, क्योंकि उत्कृष्ट भी वो बांधता है तो देती सागर का बांधता है। अब यहाँ तत्प्रायोग संकलेश वाला लिया, हाँ वह आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। ये पल्ल्य पृथक्त्व की बात होती है, पृथक्त्व पल्ल्य ने वो तो स्वधर्म ईशान के पृथक्त्व पल्ल्य की आयु बांधेंगे। परिहार विशुद्धि संयम में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अब वो तो छठा सातवां गुणस्थान है तो सातवें में उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी। जो अप्रमत्त संयत जीव सर्व विशुद्ध है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी आहार कायोगी के समान है। हाँ, पल्य पृथक्त्व ही होगा। सूक्ष्म सांप्राय संयम में, क्योंकि ये संयम का भेद है ना, छह कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी ओग के समान है, यानी क्षपक में अंतम स्थितिबंध करने वाला जीव लेना है। अन्य कोई कर्म बनते ही नहीं है तो अन्य का सवाल नहीं है, इसलिए छह कर्मों को ही लिया। कितना है तो बात अलग है, कौन है उसकी बात चल रही है। क्योंकि हमने देखा ज्ञानावरण का है, दर्शनावरण का है, अंतराय का है, अंतर्मूर्त हो रहा है, वेदनीय का 12 मूर्त, नाम गोत्र का 8 मूर्त। देखो ये सूक्ष्म संप्राय हुए, संयता संयतों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है। अब पांचवे गुणस्थान में सर्व विशुद्ध कौन होगा, जो सातवें के सन्मुख है, वो मनुष्य, जो अन्यतर मनुष्य संयम के अभिमुख है, साकार जागृत है और सर्व विशुद्ध है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है, क्योंकि संहिता संयत को लिया है ना, जो दो गति का जीव तत्प्रायज्ञ मनुष्य तीन तत्प्रायज्ञ संकलेश परिणाम वाला है, वह आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। संयता संयत जघन्य वो भी पल्ल्य पृथक्त्व ही होगा शायद, जरा देख लेते। संयता संयत की बात अलग है क्या, 25 निकालो। वो आदेश में था तो नहीं, मूल में अभिनिबोधि ज्ञाने में, मगर वो तो देव करेगा जघन्य। मनुष्य तीर्यंश पांचवी गुण संयमा संयम वाले का जघन्य के प्रकरण में संयम मार्गना भी होगी ना। तेईस पेज पर देखो जघन्य का प्रकरण हुआ था। मनुष्य त्रिक पंचनी पचपन अवधि ज्ञानी मन परिज्ञानी संयत हाँ अध्यक्ष जघन्य की बात मैं 23 पेज पर देख रही। मन परिज्ञानी और संयत के पल्लवम पृथक्त्व, वहाँ संयमा संयम की बात ही नहीं, आगे देखते हैं जो मार्गणाओं में संयम मार्गणा की बात कहाँ आई वहाँ देख लो। उपशम समय दृष्टि मास पृथक्त्व देखो, मान कषाय वाले तीन सामायिक छेदों को स्थापना वाले मूर्त पृथक्त्व लिया। देखो सामायिक छेदों को स्थापना में 29 पेज है वो, छब्बीस में हाँ 26 हाँ। आहार कायोगी मिश्र कायोगी इस प्रकार और संहिता संयत जीवों की यानी पल्लवम पृथक्त्व ही होगा। पेज 26 पर अभी वो पृथक्त्व का हिनादिक प्रमाण हो सकता है, क्योंकि संयमियों के और परिहार विशुद्धि वालों की जो विशुद्धि ज्यादा होगी तो थोड़ा ज्यादा पल्ले बांधेंगे, पर पल्ले पृथक्त्व सामान्य कथन होगा। देखो फिर से पढ़ती हूँ, संयता संयतों में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर मनुष्य संयम के अभिमुख है, साकार जागृत है और सर्व विशुद्ध है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। और आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो दो गति का जीव तत्प्रायज्ञ संक्लेश परिणाम वाला है, वह आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। यानी वो भी भले पांचवें गुणस्थान वाला हो, अधिक से अधिक आयु हो तो ऊपर की बांधेगा, परंतु यहाँ सौधर्म ईशान की भी बांध सकता है, इसलिए पृथक्व पल्ले लेना उसको। अब लेशा में कृष्ण नील कपोत की बात उन्होंने बताई थी, उत्कृष्ट में बताए थे, जगन्य में एक इंद्रिय के समान बताया था। पीतलेशा और पद्मलेशा में, अब पीतलेशा और पद्मलेशा तो पंचेंद्रियों में होगी और मनुष्य देव और तिर्यंचों में होगी, सात कर्मों के नेपन यहाँ उनका स्वीकार नहीं है शायद। पीतलेशा और पद्मलेशा में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर अप्रमत्त संयत जीव, क्योंकि अगर वो मिथ्या दृष्टि लेते हैं, उसको लिया ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि वहां उत्पन्न होने के समय में तो उसकी वो नहीं रहेगी ना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ही देखा था यह महाबंध में असंगी को पीतलेशा स्वीकार नहीं है। अगर असंगी को स्वीकार होती तो हजार सागर का पल्ले का संकेत बाबा कम कह देते, कपोत में लिया उसको, कपोत में वो जाता है ऐसा। पीतलेशा और पद्मलेशा में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अभी यहाँ विशुद्धि वाला लेना है, जो अन्यतर अप्रमत्त संयत जीव साकार जागृत है और सर्व विशुद्ध है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। अथवा कहकर जो दर्शन मुख का क्षपक जीव तदनंतर समय में कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि होगा ही नहीं, वो अनित्यकरण का अंतिम समय है, क्योंकि अनिवृत्तिकरण के पश्चात वो कृतकृत्य वेदक होता है। यानी बाकी वो जो सातिशय अप्रमत्त भी ले सकते हैं ना, क्षपक के सन्मुख वाला, श्रेणी के सन्मुख वाला भी ले सकते हैं, परंतु यहाँ उन्होंने दर्शन मुख की क्षपणा करने वाला भी अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय लिया है। हाँ, वो भी हो सकता है, और वो अगर लेते हैं वो अधकरण का अंतिम समय होगा। हाँ, वो भी क्षपक श्रेणी के सन्मुख वाला लेना है वहां पर, परंतु वहां अधकरण का अंतिम समय होगा और दर्शन मुनि के क्षपक में अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय होगा। ये सातवें गुणस्थान वाला ही क्षपणा करने वाला जीव लिया। अच्छा, कोई भी जीव लिया, वैसे सातवें गुणस्थान वाली बात ली नहीं उन्होंने, केवल दर्शन मुनि का क्षपक लिया है। मनुष्य ही लेना है, क्योंकि क्षपना तो मनुष्य ही करेगा। हाँ, कृतकृत्य वेदक होगा, होने के बाद उसका मरण हो सकता है। इन दोनों विकल्प ले लिए, उसमें गुणस्थान नहीं बताया है, केवल अप्रमत्त के लिए हो तो बता चुके हो। आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? यानी अप्रमत्त में अगर पीतलेशा वाला है तो वो सर्व विशुद्ध नहीं हो सकता है, परंतु यहाँ ज्यादा विशुद्धि यहाँ पर हो सकती है उनका कहना है, क्योंकि श्रेणी के सन्मुख वाला लेंगे तो वहां शुक्ल लेशा हो जाएगी, यही कह रहे हैं ना आप, हमारी लेशा की कंडीशन है। अब आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी पीत लेशा वाले या पद्म लेशा वाले मनुष्य तीर्यंश, हाँ वो देवायु अगर बांधते हैं तो पीत लेशा वाले कितनी देवायु बांध सकते हैं मिनिमम? नहीं, मैं मनुष्य मिथ्या दृष्टि की बात कर रही हूँ, उन्होंने जो बताया उसको भूल जाओ, हम विचार करेंगे ना पीत लेशा वाले मनुष्य तीर्यंच देवायु की जघन्य आयु कितनी बांधेंगे? अरे 10,000 वर्ष की बांधेंगे ना बहुनत्री की। मरण की कहाँ बात है, आयु बंध की बात है। आयु तो मरण के समय नहीं बांधती, मरण के समय में उनकी तो मरण के समय तक पीत लेशा है, वहाँ देव में जाने पर उनकी अशुभ लेशा होगी। होगी ना, पीत लेशा में ही मरेगा और वहाँ जाके वो कृष्णादि तीन अशुभ लेशा में जन्मेगा, भवनत्रिक में। भवनत्रिक में नहीं, मिथ्यात्व सासाधन में अशुभ लेशा में जन्मता है। वो पीत लेशा में जन्मने वाला वो सौधर्म ईशान वाला होगा। क्यों, समय दृष्टि कहाँ लिया हमने, मिथ्या दृष्टि लिया है। देवायु मेरा प्रश्न क्या है, पीत लेशा वाला मनुष्य तीर्यंच देवायु मिनिमम कितनी बांध सकता है? 10,000 वर्ष की बांधेगा। क्यों अरविंद भाई इतना प्रश्न? लेशा पकड़ रहे, मैं लेशा में मैं गति की बात कर रही हूँ आपको। लेशा में हमको देव को ही लेना है, पीत लेशा वाला देव अंतर्मूर्त की आयु बांध सकता है, यहाँ तो उसी को लिया होगा। फिर से देखो, आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है? तो देव जो पीत लेशा वाले है, मिथ्या दृष्टि है, वो अंतर्मूर्त की मनुष्यायु तिरियंचायु बांध सकते हैं, उसको यहाँ लिया है। परंतु मेरा प्रश्न ऐसा था, पीत लेशा में मनुष्य तिरियंच अगर देवायु बांधेंगे तो मिनिमम 10,000 वर्ष के बांध सकते हैं ना। अरविंद भाई कुछ प्रश्न है? हाँ अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त हाँ, वो कितना बांधता है तो मूर्त पृथक पर बांधता है इस तरह से। देखो क्या कहते हैं
अरविंद भाई, क्या बोलते तो
सुनाएंगे? अरविंद भाई जो कहते वो 26 पेज निकालिए, तो उन्होंने क्या कहा वो आपको पता चलेगा। निकालो 26 पेज। वहाँ आयु कर्म के बारे में कुछ विशेषता बता रहे थे, जो हमने पहले देवों के अलग अलग बात देखी थी ना। हाँ हाँ, तो वहाँ लेशा में भी बताया है 26 पेज पर, पहले पैराग्राफ के 1, 2, 3, 4 नीचे से चौथी लाइन, पीत लेशा वालों के आयु कर्म का कथन सौधर्म कल्प के समान है, यानी अंतर्मूर्त, और पद्म लेशा वाले के सानत कुमार कल्प के समान है, यानी मूर्त पृथक, वही लेना है। पर वो क्लैरिटी करने के लिए मैं आपको उल्टा पूछ रही थी कि पीत लेशा वाला मनुष्य तीर्यंच अगर देवायु बांधता है, फिर पीत लेशा में देवायु ही बांधेगा मनुष्य तीर्यंच, अन्य कोई आयु नहीं बांधेगी उसके। तो पीत लेशा में देवायु अगर मिनिमम बांधता है सर्व संकलेश वाला, तो कितनी बांधेगा? तो 10,000 वर्ष, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव पीत लेशा वाला सौधर्म ईशान की भी आयु बांध सकता है, उसकी बात यहाँ नहीं लेनी हमको। तो देखो फिर आते अपने पेज पर, 46 पर बात चल रही थी लेशा का प्रकरण में, आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है, वो कितना आयु बंध करता है ये नहीं पूछा यहाँ पर। पीत और पद्म दोनों के लिए ये बात लागू होगी, कौन सी? जो अन्यतर देव मिथ्या दृष्टि है, अन्यतर ने अपने अपने लेशा वाला मिथ्या दृष्टि है, तत्प्राग्य संकलेश परिणाम वाला है, और जघन्य आबादा के साथ जघन्य स्थितिबंध कर रहा है, वह आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। यानी वो तो पीत के लिए अंतर्मूर्त होगा और पद्म के लिए मूर्त पृथक होगा। समझ में आई बात? पद्मलेशा वाला मिनिमम आयु कितनी बांधेगा तो देव को कंसीडर करना है, और वो बांधेगा मुहूर्त पृथक। तो और पीतलेशा में जघन्य आयु बांधने वाले कौन है? वो भी देव ही है। कौन से देव है? भवनत्रिक और सौधर्म ईशान। वो मिनिमम आयु कितनी बांधेंगे? वो तो अंतर्मुखी है ना, पर्याप्त जीवों की। अब आगे बढ़ते हैं, सम्यक तो मार्गणा की बात है। वेदक समय दृष्टियों में, क्योंकि वेदक समय दृष्टि कहने से चौथे से सातवें है, और विशुद्धि सातवें में ज्यादा होगी। सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी पीतलेशा के समान है। अभी हमने ऊपर देखा था ना, अप्रमत्त संयत जीव साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है, वो इसको लेना। और यहाँ पर ले सकते हैं अप्रमत्त में, फिर भी वेदक सम्यक्त्व से जो शायिक करने जा रहा है, जैसे ऊपर लिया ना दर्शन मुख का क्षपक है, वो यहाँ पर भी ले सकते हैं। अब वेदक समय दृष्टियों में आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? देखो, समय दृष्टि देव मिनिमम वर्ष पृथक्त्व की आयु बांधेंगे, और समय दृष्टि मनुष्य तीर्यंच मिनिमम साधिक पल्ले तो आयु बांधेंगे। इसलिए यहां वेदक समय दृष्टियों में देवनार के लेना है। हाँ, वर्ष पृथक्त्व का करेंगे, क्योंकि तो जो देव और नारकी जीव तत्प्रायोग्य संकलेश परिणाम वाला है, वह आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। कंडीशन तो वेदक समय दृष्टि की डाली ही थी, केवल देव और नारकी कितना अंतर्मूर्त, तो अंतर्मूर्त का भी बंद कर सकते हैं, परंतु यहां समय दृष्टि देव नारकी है। उपशम समय दृष्टियों में छह कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी कौन है? अब उपशम समय दृष्टि यानी वो ग्यारहवें तक जाने वाला है, तो दसवें गुणस्थान में लेंगे उसको। जो अन्यतर सूक्ष्म सांप्रायिक जीव अंतिम समय में जघन्य स्थितिबंध कर रहा है, ये चढ़ने वाला लेना है, श्रेणी चढ़ने वाला, उपशम श्रेणी चढ़ने वाला, क्योंकि उतरते समय बंध ज्यादा होगा, इसलिए अंतिम वाला लिया। अंतिम समय में जघन्य स्थिति बंद कर रहा है, ऊपर क्या लिखा है? चरिमे जघन्य थिदि, चरिमे कहा है, वो अंतिम समय में अंतिम जघन्य स्थिति बंद कर रहा है होना चाहिए। अन्यत्र हमने अंतिम जघन्य स्थिति बंद देखा था। हाँ, देखो पहले देखो, हमने अंतिम जघन्य स्थिति बंध की बात आई थी, ओग में भी देखो पेज नंबर 40 पर सूक्ष्म सांप्राय के बारे में था ना, क्षपक था वहां पर, अंतिम स्थिति बंध में अवस्थित है। चरिमे ठिदि बंधे वर्तमानस, यहां पर भी सुम संप्रे चरिमे जहन्न ठिदि वर्तमानस, यानी समय में शब्द नहीं होना चाहिए, अंतिम अंतिम जघन्य स्थिति बंद कर रहा है, अंतिम समय में निकाल दो। ये 40 नंबर का हमने आपको रेफरेंस बताया, क्योंकि अंतिम अंतर्मूर जो यथा योग्य है वो उतना का उतना स्थितिबंध होता रहता है, भले परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध हो रहे वहां पर, फिर भी स्थितिबंध उतना का उतना हो रहा है। ऊपर से पांचवी लाइन में सांप्रायिक जो अंतिम अंतिम समय में निकालो, अंतिम जघन्य स्थितिबंध कर रहा है। हाँ, चरी में लिखा है, चरी में समय में नहीं लिखा, चरी में जहन्न ठिदी बंद में जो वर्तमान है, अब मुनि का बताएंगे। मुनि कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर अनुवृत्ति उपशामक जीव, यहाँ पर भी अंतिम जघन्य स्थिति बंध कर रहा है, समय में निकालो, क्योंकि हमें स्पेसिफिक होना चाहिए ना। अगर हमको केवल अंतिम समय में ही घटित करेंगे तो उसके पूर्व समयों में भी उतना ही स्थिति बंध हो रहा था। वह मोहनीय कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। आगे बढ़े अभी। सासादन सम्यक्त्व में सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर चार गति का जीव सर्व विशुद्ध है और जघन्य स्थिति बंध कर रहा है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। अथवा संयम से गिरकर जो सासादन समय दृष्टि हुआ है, ये ज्यादा है, वह सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। और वो भी शुरुआत में होगा ना, वो जब ज्यादा टाइम अगर सासादन में रहता है तो उसकी विशुद्धि वैसे भी कम होने वाली है, क्योंकि वो मिथ्यात्व के अभिमुख वाला जीव है ना। अभी वो तो नियम से मिथ्यात्व में जाने वाला है, तो स्टार्टिंग में उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी। इसलिए संयम से गिरकर जो अभी अभी सासादन में आया वो उसको लेना है। अब सासादन में ही आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर चार गति का जीव, चारों गति का लिया, तत्प्रायोगिक संक्लेश परिणाम वाला है और आयु कर्म का जघन्य स्थिति बंध कर रहा है। यहाँ तो अपर्याप्त नाम कर्म बनता नहीं है, तो लब्धि अपर्याप्त की आयु नहीं लेना है, पर्याप्त की जघन्य आयु अंतर्मूर्त की होगी। जो हमने देवनार की भी अंतर्मूर्त की आयु देखी थी, इसलिए चारों गति का जीव लिया, यानी अंतर्मूर्त प्रमाण आयु होगी उसकी, यानी पर्याप्त की अंतर्मूर्त वाली आयु बांधेगा। यानी मनुष्य तीर्यंश की आयु होगी अंतर्मूर्त की। वह आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी है। लक्ष्मी, आपको उत्कृष्ट स्थिति बंध याद है सासादन में? हाँ, ग्रेविक में जा सकता है ना, क्योंकि संयम से भ्रष्ट होकर आए हैं, तो द्रव्यलिंगी तो है वहां पर, तो इक्कीस सागर का बंद कर सकते हैं। कल का परसों ही हुआ था, है ना? हाँ, ये हम जघन्य देख रहे हैं। इसलिए वो संकलेश वाला लिया, मनुष्य तिरंचायु अंतर्मूर्त के बंधेगी। सम्यक मिथ्या दृष्टियों में डालो वहां पर। अब यहां तो आयु बंधेगी नहीं। सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है और तदनंतर समय में सम्यक्त्व को प्राप्त होगा, क्योंकि तीसरी से चौथे में जाने वाले की, तीसरे गुणस्थान से चौथे में जाने वाले की विशुद्धि ज्यादा है। हमने उत्कृष्ट स्थितिबंध में मिथ्यात्व के सन्मुख वाला लिया था, ये चौथे के सन्मुख वाला लेना। वह सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का स्वामी है। विशेषार्थ, पहले सब मार्गणाओं में जघन्य स्थितिबंध के अध्याच्छेद का कथन कर आए हैं, यहाँ उनके स्वामी का निर्देश किया है। इसलिए जहाँ जितना जघन्य स्थितिबंध कहा है उसे ध्यान में रखकर उक्त प्रकार से उसके स्वामित्व को घटित कर लेना चाहिए। ये हमने देख ही लिया, हर एक के साथ उसका जघन्य कितना होता है बंध, वो भी हमने देख लिया था। इस प्रकार बंध स्वामित्व का कथन समाप्त हुआ, यानी स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट स्वामी कौन है उसकी बात हमने देख ली। अब यहाँ विषय होगा बंध काल प्ररूपणा। बंध काल करते उत्कृष्ट स्थितिबंध और जघन्य हमने देखा, तो उत्कृष्ट स्थितिबंध लगातार कितना हो सकता है, कितने समय तक, और जघन्य कितने समय तक? तो बंध काल दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। उनमें से ओघ से अभी अभी पहले फिर अभी अभी हम जघन्य जघन्य देख रहे थे, अभी उत्कृष्ट उत्कृष्ट देखना है। पहले हम नक्की करते उत्कृष्ट स्थिति बंधे ने कौन सा, वो 30 कोड़ा कोड़ी वाला, 70 कोड़ा कोड़ी वाला, उसकी बात है। तो लगातार कितने समय उन तक उसका बंध हो सकता है, उसको कहेंगे काल। तो ओघ से सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का कितना काल है, क्योंकि जघन्य से काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ओ स्थिति बंध की बात है, अश्विन भाई होने चाहिए थे, वो दो समय की बात कर रहे थे ना उस दिन। पता नहीं, सुनेंगे, क्योंकि वो योग की बात उनको ख्याल में हो शायद थी, दो समय वाला उतना ही योग रहता है ना, योग में उत्कृष्ट योग दो समय तक रहता है। वो तो प्रकृति सॉरी प्रदेश बंध में बात आएगी, यहाँ तो स्थिति बंध की बात है। तो काल उसका अंतर्मूर्त है, अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, यानी उत्कृष्ट बनते बनते बीच में अनुत्कृष्ट होगा तो एक समय वाला नहीं होगा, वो अंतर्मूर्त तो होगा ही होगा। ये अनुत्कृष्ट का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, मिनिमम अंतर्मूर्त। अब उत्कृष्ट अनंत काल है, क्यों? अभी इस यहाँ हमको हाँ स्वामित्व देखना है। उत्कृष्ट का स्वामी कौन है? संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि सर्व संकलेश वाला। तो उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, एक इंद्रिय में चला गया। आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का कितना काल है, उसका एक ही समय होगा, क्योंकि उत्कृष्ट आबाधा पहले ही समय में घटित होगी, इसलिए कहते जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। ये समझ में आती बात? आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध भले 33 सागर कहो या देवनारकी के लिए जो कुछ हम एक पूर्व कोटि लो, कि जब हम आबाधा गिनते हैं तो पहले समय में उसने इतने, दूसरे समय में आबाधा एक समय कम हो गई, तीसरे समय में आबाधा एक कम हो गई, अंतर्मूर्त तक आयु बंदी, अंतिम समय में तो अंतर्मूर्त आबाधा घटी है उसकी, इसलिए पहले समय में उत्कृष्ट स्थिति बंध गिनाएंगे आयु के लिए। अब आयु के अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि आयु का बंध अंतर्मूर्त तो होता ही होता है। पहले समय में उसको उत्कृष्ट देखेंगे या उत्कृष्ट होना चाहिए ऐसी भी बात नहीं है, तो अंतर्मूर्त तो अनुत्कृष्ट ही करेगा। इसी प्रकार ये उत्कृष्ट बंध कहाँ होता है, तो मिथ्या दृष्टि के होता है। तो इसी प्रकार मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, अचक्षु दर्शनी, भव्य अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि स्वामित्व जो मिथ्या दृष्टि सर्व संकलेश वाला संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, ये बातें इन मार्गणाओं में घटित हो जाती है। विशेषार्थ स्थिति बंध पहले उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य के भेद से चार प्रकार का बतलाए है। इनमें यहाँ सर्वप्रथम एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति बंध कम से कम कितने काल तक और अधिक से अधिक कितने काल तक होता रहता है, इसका विचार किया जा रहा है। देखो अनेक जीवों की बात बाद में बताएंगे, नाना जीवों की अपेक्षा काल और अंतर बाद में बताएंगे वो। यहाँ उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बतलाया है। इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट संकलेश रूप परिणाम अंतर्मूर्त से अधिक काल तक नहीं रहते, यानी उत्कृष्ट संकलेश रूप परिणाम में वो ईषत मध्यम इंक्लूड करके ले लेना है, क्योंकि स्थिति बंध उतना का उतना होता है। इसलिए हाँ टोटल संकलेश परिणाम हो तो दो समय की बात थी, बहु बराबर थी, पर उसका उतना का उतना स्थिति बंध हो रहा है तो उत्कृष्ट संकलेश में से ईषत मध्यम में भी आ गया, फिर भी बंध तो उतना ही कर रहा है, ये उसका अर्थ होता है। उनमें भी उन परिणामों से उतने काल तक उत्कृष्ट स्थिति बंध होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी जीव के एक समय तक उत्कृष्ट स्थितिबंध होकर अनुत्कृष्ट स्थितिबंध होने लगता है और किसी के अंतर्मूर्त काल तक उत्कृष्ट स्थितिबंध होता रहता है। क्योंकि हमने देखा था परिणाम वही हो तो भी अनुत्कृष्ट बंद हो सकता है, यानी पल्ले के असंख्यात विभाग कम तक कुछ भी बंद हो सकता है, पर किसी किसी को उतना ही बंद होगा। यही कारण है यहाँ सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। इन कर्मों के अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, जो पहले ऊपर बताया था, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिबंध होकर पुनः वह अंतर्मूर्त काल के पहले कभी नहीं होता, यानी एक बार उत्कृष्ट हुआ अंतर्मूर्त काल छोड़कर ही फिर दोबारा उत्कृष्ट हो सकता है, उसके पहले नहीं। इसका उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है जहां अनुत्कृष्ट ही होता रहेगा। क्यों? क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, यानी वो एक इंद्रिय में चला गया, उस मार्गणा का अंतर लिया। आयु कर्म का ये पढ़ लेते पहले रख। आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध एक समय तक और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध अंतर्मूर्त काल तक होता है, इससे अधिक काल तक आयु कर्म का बंध ही नहीं होता। यही कारण है आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय। एक समय क्यों लिया? क्योंकि पहले समय में लेना, हाँ, क्योंकि उत्कृष्ट आबादा तभी होगी। भले आयु की स्थिति उतनी की उतनी बांध रहे, मान लेते अंतर्मूर्त तक तो 33 सागर बांध रहा है, परंतु हर समय आबादा एक एक समय घट रही है। आगे इसलिए उसका उत्कृष्ट का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। यहाँ मत्स्य ज्ञानी आदि जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें आठों कर्मों का यह काल अविकल घटित होता है, उनमें भी ये बात घटित होती है, इसलिए इनके कथन को ओग के समान कहा है। अब यही रुकेंगे हम, कल आदेश से देखेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हूँ।